नहीं, उतना ही बादाम काफी है।
वो बादाम खाओ। नहीं, तुमसे नहीं कह रहा, मेहमान से कहा। बस तुम इतना करो कि उनको स्टोर में भेज दो, ठीक है? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब क्या हुआ कि तुम बाग खरीदने की सोचने लगे?
एक रिश्तेदार के लिए चाहिए, अगर बेचने वाला जल्दी सौदा करने के लिए राजी हो जाए तो।
वो तो 8 महीने पहले मैंने मीर्जा साहब को उनके कर्जे के बदले दिया था, उन्होंने नीलाम भी कर दिया है। लगता है तुम भूल गए हो।
उनके नाम नहीं किया था, मैंने सोचा शायद सौदा ना हुआ हो।
क्या बात करते हो, क्या इसी तुम्हारे भाई हमीद ने वो बाग मुझसे किराए पर नहीं लिया था?
मिर्जाई साहब ने हमीद से भी कहा था कि ये उसके नाम नहीं है।
उसके नाम इसलिए नहीं किया क्योंकि हर दफा जब कचहरी जाते थे तो कोई ना कोई मसला पेश आ जाता था। मैंने कितनी दफा कहा कि आओ भाई चलो ये बाग तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन उसने तवज्जो ही नहीं दी। तुम अगर उससे ये बाग खरीदना चाहते हो तो तुम्हें खुद उससे पूछना पड़ेगा कि वो बेचेगा या नहीं। मैंने सुना है कि उसने पास वाले 2 और बाग भी खरीद लिए हैं, क्यों?
पता नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम।
देखो मजीद साहब, बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूर उसे पता चल गया होगा कि इन जमीनों की कीमत पड़ने वाली है, इसीलिए वो धड़ाधड़ खरीद रहा है।
नहीं जनाब, ऐसी कोई बात होती भी तो आबनुमा प्रोजेक्ट की वजह से नाकाम हो जाती। जीत तुम्हारी हुई है जो बाग को बेच दिया। अब इजाजत दो, चलता हूं।
कहां? लो ईरान के आला बादाम तो लेते जाओ।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
सलाम हाजी साहब।
सलाम, इतनी देर क्यों कर दी?
मैं जरा स्टोर चला गया था देखने के लिए।
स्टोर किस लिए?
वो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ हो रही थी, मैंने सोचा स्टोर जाकर चेक कर लूं।
तो रजिस्टर क्यों नहीं लेके गए थे?
मुझे सारा हिसाब किताब याद है, मैंने सोचा घर से आते हुए उधर चला जाऊं ताकि वक्त बर्बाद ना हो। अभी आपके लिए चाय लाता हूं।
तुम दुकान पर बैठो, मैं जल्दी वापस आऊंगा।
जी अच्छा।
हाजी साहब, यकीन माने मैंने इनको पढ़ा तो मेरे पसीने छूट गए। ये लोग अपने जहरीले कलमों से आवाम को आपसे दूर करना चाहते हैं। मदरसे की जमीनों को मशकूक बना दिया और आबनुमा प्रोजेक्ट के बहाने मोहम्मद हुसैन पर जमीनें हड़प करने के इल्जामात भी लगाए। उनका हदफ रूहानियत है और इब्तदा आपसे की है, उसके बाद शहर के उलमा तक पहुंचना चाहते हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो ये और गुस्ताख हो जाएंगे। मैंने मदरसे के तुलाब से दरख्वास्त की है कि आके बाजार की मस्जिद में जलसा मुनक्कद करें ताकि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें।
आपकी और मदरसे के तुलाब की राय मेरे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन लोग खुद गलत बात को समझते हैं, जलसा करने की जरूरत नहीं है।
हाजी साहब, लोग तो नहीं जानते कि उनका असल मकसद क्या है। लोग तो यही समझेंगे ना कि कोई बात थी जो इनके साथ इतना बड़ा मसला पेश आया। उनका असल हदफ ये है कि उलमा को बदनाम करें। लेकिन हाजी साहब, हम शाना बशाना आपके साथ हैं।
आप तो मेरी रविश को जानते हैं, तो फिर किस लिए इसरार कर रहे हैं? मैं तंकीद और तहकीक का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तशद्दुद और साजिशों का मुखालिफ हूं। एक फर्द ने एक बात की है, उसको उसका जवाब भी मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, मुझसे नहीं तो किसी और से।
अलेकुम।
मैं
सलाम।
सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं मदरसे का एक अदना तालिब इल्म हूँ, अगर मुझ में कोई ऐब हो तो उसकी निस्बत उलमा को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो उसे इस्लाम का मसला ना समझा जाए, बस यही।
हाजी साहब, आप अगर जलसे के मुखालिफ हैं, कम से कम साइड इंचार्ज की शिकायत तो कर सकते हैं, कुछ अरसे के लिए ये साइड बंद तो हो जाएगी।
उन्होंने एक खबर शाया की है जो खत्म हो जाएगी, मेरी शिकायत सिर्फ इस मसले को हवा देने का सबब बनेगी। इंसान को खुदा ने आजाद पैदा किया है और आजादी इजहार की नुमाया शक्ल बोलना और लिखना है, और ये कि इंसान मुनासिब हालात में बगैर किसी दबाव और खतरे के सही और मंतिकी चीज का इंतखाब कर सके। अब इस बंदे खुदा का इंतखाब यही था। अब लोग भी कोई बेकार थोड़े ना बैठे हैं कि सारा दिन बैठकर बस इस और उस साइट को देखते फिरें।
हाजी साहब, आप इस शहर की तकियागाह हैं, इस तरह के प्रोपागेंडों से आप पर से लोगों का एतमाद उड़ जाएगा। आप अगर चश्म पोशी भी करें तो हमारा फर्ज बनता है कि अपनी आवाज उठाएं।
रसूल खुदा फरमाते हैं, खुदा ने नरमी और मेहरबानी के अमल में जो सबाब रखा है वो बगैर मुदारा के अमल में नहीं रखा। मुझे अगर कोई हैसियत हासिल है और खुदा ने लोगों के मोतमिद और तकियागाह की तौफीक दी है तो ये खुदा की मशीयत है। आप अगर खुद को मेरे शागिर्द समझते हैं, मेरी बात माने और जाके अपना दर्स पढ़ें, इन कामों से काम ना रखें।
मैं माजरत चाहता हूँ, तुल्लाब किराम मुतवज्जे हों, हमने पहले इस सिलसिले में हाजी साहब से बात की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अफसोस की बात है कि इस सिलसिले में हाजी साहब तसाउल और तसामों का शिकार हो गए। उन लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि इस्लाम और उलमा की तौहीन हो, लिहाजा आप लोग हिम्मत करें, पहल करें और जो भी सलाह समझें उसे खुद ही अंजाम दें।
अहमद अली साहब, इन्होंने इस्लाम और उलमा की तौहीन नहीं की है, मुझ पर और मेरी फैमिली पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। इंशाल्लाह जब मोहम्मद हुसैन का कर्जा चुक जाएगा तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
जी अच्छा, फरीद साहब आप मेहरबानी करके इस साइट के इंचार्ज का एड्रेस मुझे दें, मैं जाकर अपनी गाड़ी उसके घर में घुसा देता हूँ ताकि उसे मालूम पड़े कि किससे टकराया है और आइंदा इस तरह की बेकार की बातें ना करे वो।
ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब अहमद अली, आप इन गलत ख्यालात के बजाय जाकर मैंने जो कहा है वो काम अंजाम दें। 3 दिन हो गए दरख्तों पर स्प्रे करने के मामले को टाल रहे हैं। आप तुल्लाब भी जाएं, अपना सबक पढ़ें, जाएं तशरीफ ले जाएं।
जी बेहतर है।
जी इजाजत दीजिए।
या अल्लाह।
हाजी साहब, कई दिन से ये स्प्रे की मशीन खराब है, ठीक हो जाती तो मैं खुद ही चला जाता, इसीलिए तो आजकल कर रहा हूँ।
अरे घर में मुंतजर किस लिए बैठे हो? क्या आसमान से पैसा आएगा? अगर इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हर रोज हाजी साहब के खिलाफ नए नए प्रोपेगंडे करेंगे। उठो और यहाँ आ जाओ, आओ मिलकर कुछ हल सोचते हैं। मदरसे के सामने इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज।
ये लो।
ये क्या है?
ये उस सामान की लिस्ट है जिसे हम बेच सकते हैं, गाड़ी, फ्रिज।
तुम्हारे ख्याल में इन सबको बेच कर कितना पैसा बनेगा?
हो सकता है किसी एक का कर्ज लौटाया जा सके।
बाकी का क्या करेंगे? देखो, इन छोटी मोटी चीजों को बेचने से हमारा मसला हल नहीं होगा, कोई बुनियादी हल निकालना होगा।
कोई बुनियादी हल सोचे, क्योंकि मैं डरती हूँ कि अम्मी अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगी।
लगता है तुम मसले को हल नहीं करना चाहते।
मैं खुद फंस के रह गया हूं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
सुनो, मौत एक दफा, रोना भी एक ही दफा। तुम बताओ कि कालीनों को कहां रखवाया है? मैं एक ही दिन में तुम्हारे लिए कस्टमर ढूंढ लूंगा, पैसा तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा, कर्ज खाओं का पैसा दे के बात खत्म कर देंगे।
अच्छा ठीक है, मैं पहले आरश को बताता हूँ।
आरश को किस लिए? वो तो अपना जूता खरीदने के लिए भी तुमसे पूछता है और तुम आरश के साथ मशविरा करने जा रहे हो।
दाऊद साहब, मेरा दिल राजी नहीं हो रहा है।
दिल को छोड़ो, अकल से काम लो। कालीनों को बेचना सही काम नहीं है, लेकिन बड़े शर को छोटे शर से दफा करना है। तुम इस काम में जितनी देर करोगे उतने ही तुम्हारे बाबा पर इल्जाम लगते जाएंगे। क्या यही चाहते हो?
कालीने हाजी दाऊद के गोदाम में है।
अब हुई ना बात। तुम जाओ, मैं दोपहर तक कोई कस्टमर ढूंढ लूंगा।
नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप भी इस मसले में बदनाम हो जाएं, मैं खुद ही ठीक कर लूंगा।
मोहम्मद हुसैन, अगर इस दफा भी गलती करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
गलती मैंने की है, अब मैं खुद ही भुगतूंगा।
जैसे तुम्हारी मर्जी,
अब चलता हूं। इंजीनियर साहब मुझे नहीं पहचाना ना? हाँ ऐसा ही है, मैं शहीदी हूँ, मोहम्मद हुसैन शहीदी। आप ठीक हैं? मैं ये पूछना चाहता था कि आपके भाई अब भी कालीनों का कारोबार करते हैं? तकलीफ ना हो तो ज़रा उनका फ़ोन नंबर SMS कर देंगे? ठीक है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। कितनी प्यारी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम सलाम।
तुम ठीक हो जहरा बेटी?
जी अम्मू जान, क्या मेरी पतंग अच्छी है?
हाँ, तुम्हारी पतंग भी बहुत प्यारी है। वाह क्या बात है, लगता है बच्ची ने पूरी तरह से आपको सरगर्म कर रखा है।
ऐसा सरगर्म करना, सुबह से रट लगा रखी है, मुझे पार्क में जाना है, पतंग उड़ानी है।
लगता नहीं कि आप ये भी काम कर सकते हैं।
जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, पतंग उड़ाना खुद एक महारत है। मैं 1 घंटे से इसको पार्क में उड़ाने की कोशिश कर रहा था और इधर उधर दौड़ा फिर रहा था। एक खुदा का बंदा गौर से मुझे देख रहा था कि आखिरकार मैं पतंग उड़ा पाऊंगा कि नहीं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, तभी एक छोटे से लड़के ने आकर मेरी मदद की।
अच्छा हुआ,
सब मुझे ही देख रहे थे और मुझे शर्म आ रही थी।
आप जाइए, मैं मुजाहिम नहीं होता, फिर मिलते हैं।
जी हाफिज। जहरा बेटी, पतंग मुझे दे दो, तुम जाके हाथ मुंह धुलो। शाबाश। सलाम अलैकुम।
सलाम।
लाइए मैं मदद कर
दूं। शुक्रिया, भारी नहीं है, मैं ले जाती हूँ।
आपने भी तय कर रखा है कि हर पीर को जब मेरा रोजा होता है इतने खुशबूदार खाने बनाए, मुझे आजमाना चाहती हैं?
बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकती। और हाँ, अगर आप भी दूसरे दिनों में घर में रहेंगे तो हर रोज आपको भी ये खुशबूदार खाने मिलेंगे, आदत हो जाएगी आपको।
हाँ सही कह रही हैं आप। ये बताएं कि मुझसे ऐसी क्या खता हुई है जो आप इतना मुख्तसर जवाब दे रही हैं?
आपने कुछ नहीं किया, गलती मेरी है। मेरी जगह कोई भी हो, अगर साल में 365 दिन घर में अकेली रहेगी तो कमगो तो हो ही जाएगी ना।
आप थोड़ा सा नाइंसाफी नहीं कर रही हैं? मैं कम से कम 6 महीने तो आपके साथ घर पे होते ही हूँ।
हाँ अलबत्ता, इन 6 महीनों में आधे तो आप TV प्रोग्रामों और रेडियो के स्टूडियोज में गुजार दिया करते हैं।
अच्छा आप ही बताएं मैं क्या करूं, मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन तबलीग के लिए मुझे इस शहर उस शहर में जाना पड़ता है। मैं घर में तो बैठकर आपके लिए और खुद के लिए तबलीग नहीं कर सकता।
आपका मसला यह है कि आप तबलीग और लोगों से मिलने जुलने को मुझसे और जहरा से ज्यादा पसंद करते हैं।
अब आखिरकार किसी को तो इन शहरों और गाँवों में जाके तबलीग करनी होगी, नहीं?
जी हाँ, तो आप भी साल में 2 महीने तबलीग के लिए जा सकते हैं, बाकी दिन मेरे और जहरा के साथ कुम में रहें, इस तरह से आप अपनी तालीम भी जारी रख सकेंगे।
देखिए जिस दिन हमारा निकाह हो रहा था मैंने आपसे कहा था कि मैं तबलीग के लिए जाऊंगा।
जी हाँ, आपने कहा था कि तबलीग के लिए जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं समझती थी कि हमेशा आप अकेले ही जाएंगे। मैंने उस वक्त अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि एक तलबा से शादी करूंगी, अब लगता है बस एक ड्राइवर से शादी की है मैंने।
अपने दिल की बात बताना अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए।
जी जी, जो ही मैं बात करने पर आती हूँ आप हमें इंसाफ के दायरे से बाहर समझने लगते हैं, लगता है हम यहाँ आपके मुजाहिम हुए।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
अकबर साहब, मैं खुद कल आके सारी जमीनों पर हल चला दूंगा, ठीक है?
मैं 1-2 दिन में ही समझ गया था कि तुम काम के बंदे नहीं हो और काम के लिए आए भी नहीं हो। बारात अली साहब, यहाँ आए हो कि एक जगह बैठकर पढ़ाई के बहाने आराम कर सको।
अकबर साहब, आप अपने माल की ज़कात और खुम्स ले जाके हाजी शहीदी साहब को देते हैं, लिहाजा ये बिल्कुल ठीक नहीं कि आप उलमा के पीछे बातें करें और इस तरह से फैसला करें।
तुम अपने आप का हाजी शहीदी साहब से मुकाबला मत करो।
खुद शहीदी साहब ने मुझसे कहा कि मैं जाके मदरसे में पढ़ूं। आप अगर उनको मानते हैं तो उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा ना।
मैं उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन वो मासूम तो नहीं है। और हाँ, हाजी शहीदी साहब के तो बहुत सारे शागिर्द और तालिबे इल्म हैं। तुम में कौन सी ऐसी अच्छाई ऐसी खूबी है, तुम में कौन सा हुनर है जो दूसरों में नहीं है?
आखिर कोई बात तो होगी जो उन्होंने मुझे आने को कहा।
अच्छा तो तुम में ऐसी कौन सी बात है कि अगर ना हो तो इस्लाम और मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे?
अकबर साहब आप खामखा बात को उलझा रहे हैं।
मैं उलझा रहा हूँ खुदा के बंदे? जरा हिसाब लगाओ, देखो हमारे इसी इलाके में हर चंद मुरब्बा मीटर पर एक आलिम रहता है, हैं? और अगर तुम जाके आलिम दीन बनते हो,
दो लोगों को मसला बयान करो या मिंबर पर जाके तकरीर करो या लोगों को तरबूज खिलाकर उनका दिलो जिगर ठंडा करो, इनमें से कौन सा बेहतर हो?
मैं अगर हाजी शहीदी साहब की तरह दो लोगों को राह रास्त पर ला सकूं और उनको कामयाब कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत है।
मैंने कहा ना, खुद को हाजी शहीदी साहब के साथ मत मिलाओ। देखो लड़के, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। आज ही कल मैं तुम्हारी और हाजरा की महरमियत का टाइम खत्म होने वाला है। अगर ये हालात इसी तरह के रहे तो ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे।
बहुत मुश्किल है।
दुनिया की कदर कीमत मुख्तसर वक्त के लिए है। दुनिया मकसद नहीं है, मंजिल नहीं है, खेती है। दुनिया तिजारत की जगह है, लेकिन जो दुनिया को ना पहचाने, अफसोस अफसोस, वो दुनिया को तो खरीद लेता है लेकिन दीन को खो देता है। जिससे दिल की और बातिन की आंखें ना खुलें, खुदाबीन और हक शिनास ना बने, इमाम शिनास ना बने, जब बरजख में दाखिल होगा तो अंधा होगा। वहां पर किसी से कर्जे पर आंखें नहीं ले सकता या ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि उसे आंखें मिल जाए। जो कोई उस दुनिया में लेकर गया होगा वो इसी दुनिया से लेकर गया होगा। मेरे भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतने इशारे मुझे?
माफ कीजिएगा, एक मिनट इसे मैं लगा दूं।
रेडियो टेलीविजन के बरादरान के लिए जरा एक सलवात पढ़ दीजिए। आवाज तो आ रही है।
हाँ, लेकिन ज्यादा साफ नहीं है, आप इजाजत दें।
लगा दीजिए मेरे भाई, लगा दीजिए।
इंशाल्लाह आज आपकी पूरी तकरीर सही तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। माफ कीजिएगा।
काश ऐसी कोई फिल्म बने जिसमें उन लोगों की जिंदगी की तस्वीर कशी हो जो अपनी मर्जी और शौक से दीन पर अमल करते हैं, जिंदगी और फैमिली के ताल्लुकात में भी अपने शौक से दीन पर अमल करना पसंदीदा अमर है। जिंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन एक ऐसी जिंदगी, मर्द और औरत की जिंदगी, जिसमें हर वक्त वो एक दूसरे से अपने हक का मुतालबा करते हों, शौहर कहता हो कि तुमने मेरा हक खाया है और बीवी कहती हो कि तुमने मेरा हक खाया है। नौजवान जोड़े इस बात की तरफ तवज्जो दें, वो जिंदगी शीरी है कि जिसमें
क्या कह रहे हो?
दूसरे को
कह रहा हूं कि क्या जबरदस्त तकरीर कर रहे हैं। क्या तकरीर कर रहे हैं मेरे भाई? क्या ये तेहरान में भी ऐसी तकरीर करते हैं? इनकी तकरीर में कोई दम ही नहीं है।
ऐसी सूरत में अगर एक ने दूसरे के साथ नेकी की और दूसरे ने नेकी का जवाब नहीं दिया तो वो नाराज नहीं होगा, लेकिन खुश भी नहीं होगा। अब ये कहे कि मैं जीत गया हूं और अपनी बीवी से आगे बढ़ गया हूं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द चंद दिन उनकी क्लास में नहीं आए। जब आए तो इमाम ने उनसे पूछा कहां थे। शागिर्द ने कहा कि मेरी बीवी हामला है, मैं उसकी घर पर देखभाल कर रहा था। इमाम सादिक ने उसकी इस बात पर बहुत तारीफ व तमजीद की।
कह रहे हैं जनाब?
कुछ नहीं, खुशामदीद, खुशामदीद। कैसे हो तुम?
सलामत रहिए।
तुमने बरात अली को नहीं देखा, कहाँ है वो?
अब वो यहाँ नहीं आते हैं जनाब, अकबर साहब ने उन्हें निकाल दिया है।
सच कह रहे हो? वाकई निकाल दिया?
हाँ निकाल दिया है।
खुदा उस अकबर के बाप को बख्श दे, अपनी जिंदगी में अगर एक ही सही काम किया होगा तो वो यही होगा।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। खुदा निगहबान। वाह 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 वाह, मुबारक हो। अजीज तलबा अपना मुंह मीठा करेंगे, लीजिए लीजिए।
वाह वाह,
खाइए खाइए साहब। खैर है, इससे ज्यादा खैरियत की बात क्या होगी। सलामत रहें।
हाजी अहमद अली, कोई खुशखबरी है?
बरात अली इस्लाम के दामन में वापस आ गया है, इससे बड़ी खबर क्या होगी। लीजिए।
तो क्या वो खुदा का बंदा काफिर हो गया है?
अकबर गाफिल की खिदमत में रहना कुफ्र से भी बदतर है। अब कहाँ हैं?
कमरे में।
नौश फरमाइए।
अरे मोहसिन,
ये मिठाई सब में तकसीम कर दो, बगैर मुंह मीठा किए कोई बाहर न जाए।
ठीक है, लो भाइयों मिठाई खाओ।
लो।
वाह 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 मेरे बेटे बरात अली।
सलाम अलैकुम।
सलाम तुम्हारे चांद से चेहरे पर। बेटा तुम कोई पराया तो नहीं हो? कसम से मेरे लिए रोजे रोशन की तरह आया था कि तुम्हें आखिरकार उस गाफिल अकबर की हकीकत का पता चल जाएगा और वापस मेरे पास आओगे तुम। अलबत्ता तुम्हारे आने की खातिर मुझे एक बकरे की कुर्बानी देनी होगी और अब देर हो रही है। जाओ अब घर जाओ, अमामा और अबा ले आओ, हाजी साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज की मगरिब और इशा की नमाज अपने प्यारे बेटे के बीच पढ़ूंगा।
ऐसी भी क्या जल्दी है अबूजान?
जल्दी इस बात की है कि दोबारा शैतान तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगा और दोबारा तुम अकबर के घर की तरफ चले जाओगे और फिर वही बात शुरू हो जाएगी।
अबूजान मुझे आपसे एक बात करनी है।
कोई बात नहीं, जब उलमा का लिबास पहन लोगे तो तुम्हारे पास वक्त काफी होगा। मैं खुद आकर तुम्हारी तकरीर में बैठ जाऊंगा और सुबह तक तुम्हारी बातें सुनूंगा। अब जल्दी करो, हाजी साहब को खबर भी देनी है। बेटा चलो जल्दी करो, उठो। शाबाश बरात अली, आफरीन।
अबूजान
जी बेटा
मेहरबानी करके फिलहाल हाजी साहब से कुछ ना कहिएगा। मैं अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचाऊं कि अमामा लगाऊं या नहीं।
क्या मतलब?
मतलब यह कि मेरे दिल में शक पैदा हो गया है। अकबर साहब ने निकालते वक्त मुझे एक बात कही जिसका मैं जवाब नहीं दे सका।
बेटा उस गाफिल अकबर ने तुम्हारे दिल में शक डाला है, तुम ध्यान ना दो, ठीक हो जाएगा, छोड़ो।
नहीं सच कह रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम तलबा ना भी बने तो दुनिया का कौन सा नुकसान हो जाएगा और बने भी तो कौन सा तीर मारोगे।
इसका जवाब मैं देता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि ये अकबर गाफिल है तो बिला वजह नहीं कहता, उसकी रूहानियत का क्या पता, तुम उसकी बातों पर तवज्जो ना दो।
वो सही बात कह रहे थे, आप सुनिए तो। वो कह रहे थे कि फर्ज कर लो तुम आलिम बन भी गए तो कौन सा ऐसा बड़ा काम कर लोगे जो दूसरे नहीं कर सके, तो मुझे इस बात का जवाब आना चाहिए या नहीं?
देखो बरात अली, मैं अगर चाहूं कि तुम ऐसा मौलवी बनो जो किसी भी मसले को हल ना करे और कुछ ना करे तो मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूं कि तुम काफिला ले जाने वाला मौलवी बनो, ये तो मुश्किल नहीं है, कर तो सकते हो ना?
मैं चाहता हूं ऐसा आलिम बनूं जो असर गुजार हो और लोगों के मसाइल पूरी तरह से हल कर सके।
मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम एक दफा अमामा रख लो फिर आके उस कमरे में बैठ जाओ, खूब सोचो और देखो कि तुम्हारा जहन किस चीज में चलता है, कौन सा काम कर सकते हो। मैं इसरार नहीं करता कि तुम काफिले वाला ही आलिम बनो, तुम में जो हुनर है उसी को अपनाओ, बस एक दफा अमामा लगा लो।
मैं जब तक यकीन तक नहीं पहुंचूंगा अमामा नहीं पहनूंगा।
तुम बच्चे तो नहीं हो बरात अली, क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है?
जी।
तो मेरा भी आखिरी फैसला सुनो, तुम मेरी नजर में इसके बाद तालिब इल्म नहीं हो बल्कि एक बेकार शख्स हो। अपनी किताबें और बैग समेटो और मदरसे से निकल जाओ, आज के बाद मेरे घर में कभी कदम मत रखना।
खुद हाजी साहब ने बताया कि मैं यहाँ कमरे में रुक सकता हूँ।
तुम्हारा बाप मैं हूँ, हाजी साहब नहीं है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जाओ अपना काम करो और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, फौरन यहाँ से निकल जाओ इसी वक्त।
बरात अली कहाँ चले?
जब तक मैं यकीन तक ना पहुंचूं।
हाजी साहब ये मिठाई तो खत्म हो गई है।
यकीन करने लगा।
थोड़ी सी और
बस करो ना, तुम लोग कितनी मिठाई खाओगे, दांत खराब हो जाएंगे। जाओ अपना काम करो, जाओ।
क्यों
हैं?
ऐ लोगो, अच्छे इखलाकी कामों में और आला अकदार तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। दूसरे अल्फाज में, अगर किसी नेक काम को बगैर इश्तियाक और रगबत के साथ अंजाम दिया जाए तो उसको ज्यादा अहम ना समझो। अलबत्ता इमाम हुसैन दिलों में शौक पैदा करते हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ नसीहत की हद तक महदूद हो। लिहाजा रसूल खुदा हजरत मोहम्मद फरमाते हैं, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। आप जानते हैं कि निजात की कश्ती और हिदायत के चिराग में क्या फर्क है। हिदायत का चिराग ऐसा है जैसे समंदर के साहिल पर एक चिराग रोशन हो। जनाब दरिया में रोशन फानूस यानी मिसबाह हिदायत बिल्कुल उस समंदरी फानूस के जैसा है जो गुमशुदा लोगों को रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर कोई डूब रहा हो और उसे तैरना भी ना आता हो और समंदर में तूफान भी हो तो वो क्या करे? ऐसे मौके पर इमाम हुसैन निजात की कश्ती का किरदार अदा करते हैं। कश्ती लाते हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें बचा लेते हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पर अगले प्रोग्रामों में अपने मोहतरम नमाज गुजार भाइयों के लिए रोशनी डालेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
हाजी साहब इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिए?
ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह कल बहस को आगे बढ़ाएंगे। या अल्लाह,
जनाब बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया
जी, शुक्रिया।
जनाब क्या हम आपसे ये तकाजा कर सकते हैं कि मौलाना साहब की तकरीर का वक्त बदल दें, क्योंकि उस वक्त चैनल वन से ड्रामा आ रहा होता है।
जनाब पूरा प्रोग्राम खराब हो गया और आपको नशर करने की फिक्र है।
क्या हुआ, कोई मुश्किल पेश आई है क्या?
मिर्ज़ई साहब, लगता है हमने हाजी साहब की तकरीर से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। मैं समझता था कि हाजी साहब टीवी के काम से आशना है। खुदा शाहिद है कि इन्होंने पिछले चंद दिनों में एक तकरीर भी पूरी नहीं की। आज भी जो 40 मिनट उन्होंने तकरीर की, माशाल्लाह इतनी देर में उन्होंने इतने मौजूद बदले कि मुझे पूरी तकरीर एडिट करनी पड़ेगी। नहीं, मेरे ख्याल में हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा।
खुदस्तफर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? आपको पता है ना मैंने कितनी मेहनतों से हाजी साहब को इस शहर में आने के लिए राजी किया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं खुद उनसे बात करता हूँ।
ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक का वक्त है।
ठीक है, आप ये मामला मेरे सुपुर्द कर दें, मैं हल कर लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको कल से हाजी साहब की एक घंटे की ही तकरीर मिलेगी।
इंशाल्लाह।
सलाम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम।
एक घंटे से फोन कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। स्टोर से फोन आया था कि दुबई से माल पहुँच गया है।
ठीक है, मुझे हाजी रहीमी से बात करनी है, उसके बाद मैं आता हूँ।
नहीं हाजी साहब, नहीं हो सकता। ये ट्रक वाले बातें बना रहे हैं कि जब तक पैसा नकद नहीं मिलेगा ये माल हमारे हवाले नहीं करेंगे।
नकद पैसा?
जी,
मैं आके देखता हूँ।
इतने सारे कामों के साथ मुझे मुश्किल लगता है कि तुम मस्जिद में भी काम कर सको। सुबह से असर तक अकबर साहब के खेतों में काम करते हो, आधी रात तक सबक पढ़ते हो।
नहीं, अब अकबर साहब के खेतों में नहीं जा रहा हूं मैं।
उन्होंने निकाल दिया क्या?
अबू ने कुछ कहा क्या?
अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मदरसे की तालीम का क्या करोगे?
फिलहाल मुहर्रम में मदरसे की छुट्टियां हैं ना।
अच्छा, उसके बाद?
लगता है आप मुझे काम देना ही नहीं चाहते। आपने कहा था ना कि हमें एक खुशनवीस की जरूरत है।
हाँ अभी है
तो ठीक है, मुझे खुशनवीसी भी आती है और जो दूसरे काम होंगे उनको भी कर लूंगा मैं।
तुम्हारे लिए एक अच्छा काम जहन में है।
क्या?
यहां पर एक खाली कमरा है, जंग के जमाने में हाजी शहीदी साहब के बेटे मुर्तजा इसको तालीमी और सकाफती मरकज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। क्या तुम इस मरकज को चलाने की जिम्मेदारी संभाल सकते हो?
लेकिन मैं तो अभी मुअम्मम नहीं हुआ।
जरूरी नहीं कि आलिम ही ये काम करे। अगर आम उस्तादों की तरह दर्स देना जानते हो तो काफी है।
पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।
कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें बच्चों के साथ दोस्ती करनी होगी। देखो, तुम इस काम से ना सिर्फ तालीमी खिदमात अंजाम दोगे बल्कि हाजी शहीदी साहब के जंग में लापता बेटे की याद भी जिंदा कर दोगे। अगर समझते हो कि नहीं कर सकते तो साफ साफ बता दो, मदरसे में और लड़के भी इस काम में दिलचस्पी रखते हैं।
नहीं, इत्तेफाक से मुझे इस काम में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर इजाजत दें तो मैं रातों को भी यहीं मरकज में रहूं। असल में मेरी बाइक खराब है और यहां से घर भी बहुत दूर है।
ठीक है, कोई बात नहीं। मरकज का कमरा मस्जिद की हुदूद में शामिल नहीं है, रात को सोने में कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है, अगर इजाजत दें तो मैं कल से ही आके अपना काम शुरू कर देता हूँ।
इतनी जल्दी भी क्या है बरादरी, पहले मुझे मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों से इजाजत ले लेने दो, उसके बाद।
तो ठीक है, आप उनको राजी कर लीजिए, मैं कल से आके अपने काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब।
खुदा हाफिज नासिर।
अरे हाँ, ये लेटर मदरसे आया था, शायद आपका है, देख लीजिएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया।
अली रजा, यहाँ क्यों खड़े हो?
अबू ने कहा है कि यहाँ खड़ा रहूं कि अगर आप मदरसे में जाना चाहें तो उनको बता दूं।
अबू ने ये नहीं कहा कि मुझे मदरसे में क्यों नहीं आना चाहिए।
मैं खुद जानता हूँ मदरसा मशकूक लोगों के लिए नहीं है।
मशकूक?
हाँ, आप कहते हैं ना हर चीज पर शक करना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ।
यहाँ पर खड़े होने के बजाय जाके अपना सबक पढ़ो ताकि खूब अच्छी तरह से याद कर सको।
अभी अबू को बताता हूँ।
जाओ जाके बता दो।
जाने की जरूरत नहीं है, अभी उनको एक मिस कॉल कर देता हूँ।
दिखाओ मोबाइल कहाँ से लाए हो, दिखाओ जरा मुझे। दो, छोड़ो तुम, मुझे दो, दो ना। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। ये जा रहे हैं या अंदर जाना चाहते हैं?
ये अंदर जा रहे हैं।
क्या ये तय नहीं पाया था कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे?
अबूजान सिर्फ आज ही की रात।
हर रोज इसी बहाने से यहाँ आके सोया करोगे? ये कोई होटल है क्या?
नहीं, कल रात से बाजार की मस्जिद में रहूंगा।
इतना पढ़ने के बाद भी नहीं जानते कि मस्जिद में सोना मकरूह है?
वालेकुम सलाम। नहीं, मैं मस्जिद में नहीं सोया करूंगा। वहाँ पर एक तालीमी मरकज खोला है, रातों को वहीं सोऊंगा और काम भी करूँगा।
मुझे अफसोस है बरात अली, उस तालीमी मरकज पर जिसको चलाने वाले तुम होगे। चलो कोई एतराज़ नहीं है कि तुम आज रात यहाँ आ गए। देखो तुम्हारे साथियों की दस्तारबंदी की तकरीब हो रही है, देखो कहाँ तक पहुँच गए खुदा के लुत्फ से, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, शायद तुम्हारा भी ख्याल बदल जाए। तुम तो वहीं के वहीं रहे, देखो
ठीक है
जाओ।
ये मोबाइल ले लीजिए, छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है।
तुम इस बच्चे की फिक्र नहीं करो, हमने तरबियत का तरीका बदल लिया है, शायद कारगर साबित हो, तुमसे मुख्तलिफ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसे जेब में रखो, घर जाओ।
जी
जाओ, शाबाश।
देखो मैं सिर्फ इत्मीनान हासिल करना चाहता हूँ बस।
देखो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि तुम कह रहे हो, वाह वाह, सलामुन अलैकुम।
सलाम सलाम।
या अल्लाह या अल्लाह, इस माल का बेचना न सिर्फ ये कि मना नहीं है बल्कि वाजिब भी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अगर कोई जुजी सवाल पूछना हो तो हाजी कैसेटी साहब से पूछ सकते हैं।
हाँ।
जब ये क्लास में हाजिर नहीं होते तो हाजी साहब के तमाम दर्स कैसेटों से सुनते हैं।
मोहम्मद हुसैन, माफ करना, ये माल बेचने का किस्सा क्या है?
कोई खास बात नहीं है, आरस चलें, देर हो रही है,
चलो चलते हैं।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुस्लिम साहब,
बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज।
ये किस चीज के बारे में पूछ रहे थे?
कुछ फेंके ही सवाल पूछ रहे थे, मैंने किताब से जवाब दिया।
क्या तुम मुफ्ती बन गए हो जो मसाइल का जवाब देते हो? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन रुको, अपने लिए शरीय जवाब ढूंढने में लगे हुए हो ना?
पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, फिलहाल मेरा जहन बहुत मशगूल है, बाद में बात करेंगे।
तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। तुम्हें खुद तालिब इल्म थे, अब आके कालीनों के मसले को ऐसा पेचीदा बनाकर पेश किया है कि अपनी मर्जी का जवाब ले सको।
अच्छा तो क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, जहाँ पानी हो वहाँ पर तैमम करना जायज नहीं है, हमें इस बारे में हाजी साहब से पूछना चाहिए।
बरात अली, बात को बढ़ा क्यों रहे हो? मुरादी ने हमारे पैसे से जाके कालीने खरीदी हैं, कालीनों को बेचकर लोगों का पैसा देना चाहते हैं, इसमें परेशानी क्या है?
नहीं है तो जाके किसी मुज्तहिद से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए।
हमने जाके मुस्लिम से पूछ लिया है।
मत करो, ये ठीक कह रहा है,
मतलब यानी फिर से शुरू करें।
जाके अबू जान से पूछ लेते हैं, अभी वो गरीब हैं, आओ पूछते हैं।
ठीक है, चलो चलो, खुदा हाफिज।
मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि आगे आगे मत बोला करो, तुम फिर किस लिए आ रहे हो?
मैं दरवाजे तक तुम्हें छोड़ता हूँ ना।
यानी हमें बहलाना चाहते हो?
नहीं, मैं चाहता हूँ अकेले ना रहो। अब आओ चलो चलते हैं।
मेरे भाई, मैं हाजी साहब का काबिल एतमाद आदमी हूँ, खत मुझे दे दो, मैं पहुँचा दूंगा, फिक्र मत करो।
नहीं जनाब, नहीं हो सकता।
हाजी साहब के सारे काम मैं अंजाम देता हूँ, जो भी खत आता है मैं लेता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, दे दो।
जनाब ये नहीं हो सकता, सरकारी लेटर है।
जो भी हो समझते क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खत दे दो मुझे तो।
क्या हुआ?
हाजी साहब के नाम एक खत आया है, इनसे कह रहा हूँ कि दे दो, लेकिन ये देना नहीं चाहते।
अरे
मैं मोहम्मद हुसैन शहीदी हूँ, उनका बेटा, मुझे दे सकते हैं?
नहीं हो सकता है, ये समन है, कोर्ट से आया है,
मुझे दे सकते हैं?
कैसा समन, जरा देखूं तो क्या बात है? अरे हाजी साहब को अदालत में बुलाया है, आखिर किया क्या है उन्होंने, देखूं तो। अजीब बात है, अब्दुल हुसैन शहीदी, हुदा अंसारी, पढ़ो मोहम्मद हुसैन पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुमने कंपनी खड़ी करके सब गड़बड़ कर दी, और तुम्हारी वो सास, क्या कहने उस सास
की है,
तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। तुमने और सब रिश्तेदारों ने मिलकर हाजी साहब को बदनाम
बोले जा रहे हैं।
ला मुझे ये खत।
अरे जनाब, खत को लेकर कहां जा रहे हैं?
मोहम्मद हुसैन तुम करना क्या चाहते हो?
इस किस्से को आज ही खत्म करना होगा,
तो चलते हैं हाजी साहब के पास, उसको हल करते हैं।
वो सम्मान आने से पहले की बात थी, अब सिर्फ ये रास्ता रह गया है कि उन कालीनों को बेच दें।
वाह वाह, सलामुन अलैकुम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम, आप ठीक हैं इंशाल्लाह?
आपकी दुआओं से।
हाजी साहब, आप इंटरनेट पर कुछ देख सकते हैं?
जी।
तो मेहरबानी करके अपना ईमेल खोल लें।
ठीक है हाजी साहब, इंशाल्लाह सब खैर तो है।
हाजी साहब, शहीदी और उनकी फैमिली के बारे में सवालात और तौजीहात को देखा आपने?
हाजी साहब, ये सिर्फ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, आप तो शहीदी साहब को मुझसे बेहतर जानते हैं।
इस बात को मालूम करना हम पर छोड़ दें कि ये प्रोपेगेंडा है या हकीकत।
हाजी साहब, मेरी गुजारिश है कि मुझे इस काम से माफ फरमाएं। मैं यहाँ हाजी शहीदी साहब से कस्बे फैज करने आया हूँ, इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता उनकी तफ्तीश करूँ।
ये खत दरखास्त नहीं है हाजी साहब, बल्कि शरई फरीजा है, जहमत करके अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द इरसाल करें। अल्लाह निगहबान।
खुदा महफूज रखे।
हाजी साहब ज्यादा परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
मेरी नाराजगी आपसे है, आप तो जानते थे कि आपके रिश्तेदार क्या करना चाहते हैं, तो किस लिए मेरे पास ले आए? उनको अपने काम से चश्मपोशी करवाने की बजाय शरई लिहाज से उनको मुतमईन कर दिया। मिर्जाई साहब, जरूरी तो नहीं कि शरा जिस चीज की इजाजत दे हम हर किस्म के हालात में उसको अंजाम दें।
आइए बैठिए हाजी साहब, बैठिए। मैं भी बुरी तरह से फंस गया था, नहीं जानता था कि क्या करूं। मैं समझता था कि वक्फ शुदा माल को किसी भी सूरत में वापस नहीं दिया जा सकता, इसीलिए अपनी साली को आपके पास लाया ताकि आप उसको काने कर सकें कि वो अपनी बात से पीछे हट जाए।
आपने इस काम से खुद को तो आजाद कर दिया, लेकिन मुझे बुरी तरह से फंसा दिया है। अब आप बताएं मैं किस तरह से इस मसले को हल करूं।
खुदा करे कि उसके दिल में ये बात आए और वो अपनी शिकायत वापस ले ले।
इंशाल्लाह यही होगा।
लीजिए हाजी साहब। और हाँ हाजी साहब, हमें आपसे ज्यादा तवक्को है। आपकी पिछली तकरीरें आजकल की तकरीरों से कहीं ज्यादा पुरजोश हुआ करती थीं।
जी आप सही फरमा रहे हैं मिर्जाई साहब, इन दिनों मेरा जहन एक मसले में उलझा हुआ है, खुदा करे कि वो हल हो जाए।
मुझे अपना महरम समझें, अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं हाजिर खदमत।
नहीं नहीं, ये एक जाती मामला है, एक दो दिन में हल हो जाएगा इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें।
हाजी साहब फल नोश फरमाइए।
जी शुक्रिया।
माफ कीजिएगा, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेहरबानी करके कल से पूरी तकरीर करें। हमारे ये बरादरान जो टीवी चैनल से आए हुए हैं, आपकी बातों के एक एक मिनट का हिसाब किए बैठे।
इंशाल्लाह, खुदा आपका हामी व नासिर हो। आप तशरीफ रखिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए।
माफ कीजिएगा।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
यहाँ की जमीनें भी मसला बन गई हैं हाजी साहब, कल तक उनकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन अब उनको हर कोई अपनाने के चक्कर में है। जरूर कोई ना कोई बात है।
क्या बात है बताओ, ताकि हमें भी पता चले।
कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
और ऐसे ही हाफिजी इसे बागात के बारे में पूछ रहे थे, क्यों?
वो तो मैंने अपने एक दोस्त के लिए पूछा था, उसको एक बाग खरीदना था ताकि छुट्टी के दिनों में रिश्तेदारों के साथ वहां जा सके।
पहली बात तो ये कि ये एक जाती बाग है, दूसरे ये कि उसकी चाबी मेरे पास है। आप जब भी अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ टाइम पास करने जाना चाहें तो मुझसे कहें, मैं चाबी दे दूंगा। कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे खुद पूछिए।
ठीक है जी साहब, लीजिए, चाय ठंडी हो रही है।
अरे कैसे स्प्रे कर रहे हो, कैसी दवा छिड़क रहे हो, हाथ सीधा रखो ना, ऐसे पकड़ो ताकि कीड़े गिर जाएं। इतना पैसा लगा रहे हैं, नीचे भी स्प्रे करो। अरे नीचे भी स्प्रे करो भाई, नीचे से ऊपर तक गीला कर दो, ऊपर भी करो ना, क्या कर रहे हो तुम भाई?
अहमद अली साहब जरा इधर आइएगा।
उधर भी डालो। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
उनके काम से क्या काम है आपको, उन्हें करने दीजिए।
हाजी साहब ये मेरे हाथ में नहीं है, जब से सम्मन आया है मेरी ये हालत हो गई है, माफ कीजिएगा।
हौसला नहीं है तो घर जाकर जरा
नहीं कर सकता जनाब, नहीं कर सकता, कर सकता तो अच्छा था। अरे इस तरफ से पकड़े रहो भाई, अरे क्या देख रहे हो, माफ कीजिएगा। अरे भाई ठीक से करो, क्या कर रहे हो, ऊपर तक करो भाई, क्या समझ
खुदा की कसम, जी चाहता है जमीन मुंह खोले और मैं उसमें धस जाऊं।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रहीम साहब?
ये सब मेरी वजह से हुआ है हाजी साहब, अगर मेरी जबान बंद रहती और अपनी बातों से अंसारी साहिबा को शिकायत करने की रग़बत ना दिलाता तो ये वाकया पेश ना आता।
आपने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है रहीम साहब, अगर आप लोगों के शरई मसाइल का जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा?
लेकिन सिर्फ यही नहीं है, चंद घंटे पहले ही खास अफराद ने मुझे फोन किया।
अच्छा।
उन्होंने कहा कि मदरसे के हालात के बारे में रिपोर्ट दूं।
अच्छा अच्छा।
लेकिन आप फिक्र ना करें, इस दफा मेरा ध्यान है, यानी वो जितना भी दबाव डालेंगे मैं दबाव में नहीं आऊंगा।
रहीम साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको मुझसे मोहब्बत है कि नहीं?
जी हाजी साहब बहुत ज्यादा।
देखें अगर आपको मुझसे मोहब्बत है और उसके बावजूद हकीकत लिख सकें और मेरी मोहब्बत आपके फैसले पर असरअंदाज ना हो तो इसका मतलब है कि आपने इंसानी कमाल का एक मरहला तय कर लिया है और एक बेहतर इंसान बन गए हैं। बहरहाल मुकल्लिबुल कुलूब खुदा है, हमें खुद को उसके सुपुर्द कर देना चाहिए।
हाजी साहब यहाँ स्प्रे कर रहे हैं, आप जरा उस तरफ तशरीफ ले जाइए।
आइए। नहीं आप मेरी फिक्र ना कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
खुदा पर भरोसा है।
जी जी, जिस ट्रक का कहा था वो पहुंच गया है। ठीक है, मेरा ध्यान है, आप फिक्र ना करें। ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज।
मेरे अब्बू थे,
हाँ देखना चाहते थे कि माल लूट किया है कि नहीं। ये तो वही पहले वाला ट्रक है।
हाँ देखो उसको भनक पड़ चुकी है, कहता है मेरे गोदाम का नाम नहीं आना चाहिए।
बेहतर है कि चालान पे मुरादी का नाम हो, ये मेरे लिए बेहतर होगा।
मोहम्मद हुसैन, मैं कहता हूँ कालीनों को लोड करने से पहले हाजी साहब के साथ मशवरा नहीं करना चाहते क्या?
तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? इन हालात में हाजी साहब से आंखें मिलाकर बात करने की जरूरत कर सकता हूँ मैं?
तुम क्यों खामखा काम बिगाड़ रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम नहीं चाहते कि काम बने? तुम्हें तो मौलवी की जगह सुराग रिसा और पुलिस बनना चाहिए
था। तो नाराज हो जाएंगे वो।
या अल्लाह आप ठीक तो हैं हाजी साहब?
सलामत रहिए।
हाजी साहब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं?
अगर आपके मिशन के बारे में है तो नहीं, कोई और बात है तो जरूर पूछ सकते हैं आप।
नहीं, किसी और मसले के बारे में है। सच तो यह है कि एक दो दिन हुए मैं सही तरह से तकरीर नहीं कर सका। मेरा पूरा ध्यान एक मसले की तरफ है जिसने मेरे काम पर असर डाला है, और समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं।
आपकी बेगम आपके पीछे नमाज पढ़ती हैं?
उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या?
नहीं।
हाजी साहब मैं यौमिया नमाजें कम ही घर में पढ़ता हूं, लेकिन सुबह को जब घर में होता हूं तो पढ़ती हैं।
अच्छा, खुदा का शुक्र है। इसका मतलब है कि वो आपको आदिल समझती हैं, आप पर भरोसा करती हैं। हमारा सबसे पहला फर्ज ये है कि अपनी फैमिली को हम राजी रखें। खुदा बंदे ताला ने रसूल अकरम से फरमाया, दूसरों को दावत देने से पहले अपने घर वालों और रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दो।
हकीकत यह है कि ये जो मेरे काम और तबलीग के सिलसिले में इधर उधर के सफर हैं, उनकी वजह से मेरी बीवी तकलीफ में है। इसीलिए डरता हूं कि हमारे दरमियान मोहब्बत कम ना हो जाए और ये बात जहरा पर भी कहीं असरअंदाज ना हो जाए।
हर मर्द को एक शौहर के फराइज के अलावा अपनी बीवी के लिए बाप का फर्ज भी अदा करना चाहिए। जो चीजें उसको पसंद और जरूरत हो उसको मुहैया करे, उसकी गलतियों से दरगुजर करे। अगर जिंदगी में सुकून, एतमाद और मोहब्बत नहीं होगी तो कोई काम नहीं बनेगा।
बहुत शुक्रिया, खुदा
हाफिज़। बारात अली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो आके हमारा साथ दिया।
नहीं भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस सिर्फ दुआ करो कि इन कामों की वजह से दुनिया और आखिरत में मैं रुसवा ना हो जाऊं।
इंशाल्लाह इसकी तलाफी
करो। दुआ करो कि इस तशवीश और दो दिली से निकल पाऊं। मोहम्मद हुसैन, अब मैं थक गया हूं। खुदा हाफिज।
किस वजह से एक आदमी पब्लिक बूथ से फोन करता है और अपना तारुफ कराए बगैर हमें इत्तला फराहम करता है?
शायद उसका इस वाकये में कुछ अमल दखल होगा।
शायद वो किस तरह बात कर रहा था, कहीं मिस गाइड ना किया जा रहा हो?
लग तो नहीं रहा था कि झूठ बोल रहा है।
मेरे कागजात तो पूरे हैं कैप्टन साहब, कोई बात हुई है क्या?
ये तो चेकिंग के बाद मालूम होगा, चेक करो।
जी जनाब।
तुम्हें यकीन है कि ये खाली ने मुरादी साहब की हैं?
इंजा बरा।